आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स जिसका नाम है समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो मतलब हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें इक्वालिटी कैसे होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊपर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर खड़े हैं। छोटे लाल किसान, मंजीत कौर शिक्षिका, तेजा सिंह व्यापारी, गिरीश राव छात्र, कांता देवी घरेलू कामगार, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार। तो यहाँ पर इन सबके पिक्चर्स हैं। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही हैं। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे इन्हीं लाइन में खड़े हैं। वो बोलती है हाँ बिल्कुल। तो ये जो घर की घर में काम करने वाली जो बाइया है ये लोग वोट डालने के लिए गई हैं और ये लोग आपस में बात करते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना कि हमारे यहाँ हमारे देश में सबको समान अधिकार है वोट डालने का। हमारे जो मालिक हैं जैन साहब वो भी लाइन में हमारे साथ खड़े हैं वोट डालने के लिए। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ चल कांता अब तेरी बारी आई। मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया। तो कांता ने उसकी दोस्त ने बोला कांता तेरी बारी आ गई है। तो कांता बोलती है मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। अब आ जाइए जरा इस वर्ड समानता पर। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलू को प्रभावित करती है। तो मतलब हमने क्लास 6 में पढ़ा था इसके बारे में कि लोकतंत्र क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में हमने जाना था, जैसे कि लोगों का पार्टिसिपेशन और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्ण, उन सब चीजों के बारे में। तो एक इसका पहलू है जो कि है समानता यानी कि इक्वालिटी, और पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही इक्वालिटी पर बेस्ड है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे, यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। तो हमने ये कांता की कहानी पहले पढ़ ली, अब हम इस पूरे चैप्टर में पता लगाएंगे कि इक्वालिटी कैसे है। फिर देखिए आप नीचे लाइन में, अब्दुल रहमान कारीगर, शबनम बानो गृहिणी, ग्रेसी लेलिंग परामर्शदाता, आईजैक लेलिंग सरकारी अधिकारी, रुखसाना मिर्जा मीडिया कर्मी और योगराज बेरोजगार जो है और अशोक जैन उद्योगपति। तो ये सारे लोग खड़े हैं। अब कुछ देर बाद क्या हुआ, बाद में आना कांता जी, नमस्ते साहब। तो उसके साहब ने बोला कि तुम बाद में आना। तो कांता ने कहा ठीक है सर, नमस्ते। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। तो कांता बोलती है कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, पर पहले मैं साहब के घर का काम करके आऊंगी और उनसे कुछ पैसे भी उधार ले आऊंगी। घर पर ले, ये पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो कांता अपनी बेटी से बोलती है कि तू ये पी ले, तुझे अच्छा लगेगा, शाम को जब मैं काम से लौटूंगी तो फिर अपन अस्पताल चलेंगे। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। कांता सोचते हुए जाती है कि मेरी बेटी बीमार नहीं पड़ेगी और नहीं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी है। फिर अगले पेज पर आ जाइए, कोनों को अच्छे से साफ करना, मालकिन बोलती है कांता से। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। तो उसकी मैडम उसको पैसे देती है और बोलती है कि तू पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, महीना खत्म होने पर ही पैसे मांगा कर। उस शाम को बस जरा सी देर और बेटी, उस शाम उसने अपनी बेटी से बोला बेटा बस 2 मिनट और रुक जा, हम पहुंच ही गए। जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो कांता ये सोच रही है कि जैन मैडम और जैन साहब भले वोट डालने के लिए हमारे साथ एक लाइन में खड़े हों, लेकिन अपने बच्चों के इलाज के लिए उनको लाइन में नहीं खड़े होना पड़ता जिस प्रकार हमें खड़े होना पड़ता है। अब आ जाइए मताधिकार की समानता। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटीलाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हैं या अमीर। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर वह बहुत खुश है कि अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। तो हमने ये देखा कि कहानी की शुरुआत हुई थी कि जब कांता वोट कास्ट करने गई थी तो उसने वहां पर बहुत सारे लोगों को देखा। उसने अपने जो मालिक है अशोक जैन उनको पहचान लिया, अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी पहचान लिया और उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई। उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था, एक्साइटेड थी वो कि हमारे देश में सबको वोट देने का अधिकार है और सबके पास वन वोट राइट है। सब एक साथ आकर वोट देते हैं, एक समान आकर वोट देते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमने पिछले क्लासेज में भी पढ़ा था, पिछले सिक्स क्लास में हमने जाना था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत हमारे देश के हर एक नागरिक को, जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र का है, उसको वोट देने का अधिकार है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। मतलब जैसे जैसे दिन बीतता है तो कांता को ये लगने लगता है कि क्या सच में इक्वालिटी है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। आओ उसने जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे दिन बीतता है उसको ये समझ में आने लग जाता है कि क्या हमारे देश में सच में इक्वालिटी है। वो शंका तब उसके मन में पैदा होती है जब वो अपनी बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल के बाहर एक लंबी लाइन में खड़ी रहती है। उसकी बेटी बहुत बीमार रहती है, वो एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके पीछे एक नाला है जिसकी वजह से उसकी बेटी बार बार बीमार पड़ जाती है। उसके लिए वो अपने मालिक से छुट्टी भी नहीं ले सकती, क्योंकि उनको पैसे मांगने होते हैं उनसे उधार, ताकि वो अपनी बेटी को दिखा सके। तो जब वो वहां लाइन में खड़ी रहती है अस्पताल के सामने, तो ये सोचती है वो कि ये लाइन उस लाइन से बहुत अलग थी जिसमें मैं सुबह खड़ी थी। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के तीन कारण बताइए। तो ये आपको बताना है कि तीन कौन कौन से ऐसे कारण हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। अन्य प्रकार की असमानताएं। अब कौन कौन से प्रकार की इनइक्वालिटीज होती है उनके बारे में जानेंगे। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं, भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती हैं। तो हमें ये बताया जा रहा है कि कांता उन लोगों में से है जो कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में उनको वोट देने का तो अधिकार है, लेकिन उनका जो दैनिक जीवन है उसमें ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो उनके लिए इक्वालिटी नहीं बल्कि इनइक्वालिटी दिखाती हैं। वो गरीब हैं, इसके अलावा उनको बहुत सारी इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। और हमें यहाँ पर नीचे दो कहानियां दी हैं जिससे पढ़कर हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम में देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। भारत में हमारे यहाँ हमेशा से जाति सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है। ऑल्दो हमारे जो बी आर अम्बेडकर साहब थे, दलितों के लिए उन्होंने बहुत फाइट आउट किया, सब कुछ किया, लेकिन आज भी जाति प्रथा चली आ रही है। और आप ये सोचेंगे कि गांव के इलाकों में ये ज्यादा होती है, आपको बचपन में इस चीज का आभास हो जाता है, फिर शहरों में आकर लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर जात पात कोई नहीं मानता है। लेकिन आप अपने न्यूज़पेपर का जरा वो मैट्रिमोनियल कॉलम खोलकर देख लीजिए, उसमें भी शिक्षित लोग भी जाति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आइए अब हम कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ें। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो अब हम एक कहानी पढ़ेंगे स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे की। दलित के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। दलित वो होते हैं जो लोग अपने आप को नीची जाति का बताने के लिए एड्रेस करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित शब्द का एक्चुअल मीनिंग होता है कुछ भी टूटा हुआ या कुचला हुआ, तो इससे वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ पहले भी भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, एंड आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, स्कूल के दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एक कदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां के बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। तो वो अपनी एक आत्मकथा में, अपने एक प्रसिद्ध लेख में लिखते हैं, जिसका नाम है जूठन। उन्होंने ये लिखा है कि स्कूल के टाइम पर उनको दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, और जहां पर वो बैठते थे वहां तक वो जो चटाई है वो पहुंच नहीं पाती थी, तो उनको जमीन पर बैठना पड़ता था। कभी कभी उनको दरवाजे के एकदम पास बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से बोर्ड पर जो लिखा है बहुत धुंधला दिखता था उनको। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी, धूल से चेहरा सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षक का साहस पूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए, मास्टर यो यही पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद भी आवेंगे पढ़ने को। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना लंबा चौड़ा मैदान था, वहां पर उनकी पिटाई भी कई बार कर देते थे, और बोला जाता था कि तुम इसको साफ करो, यहाँ पर मैदान में झाड़ू लगाओ। बाकी बच्चे पढ़ते रहते थे, टीचर्स वगैरह सब इसको देखते थे, और ये तब तक नहीं रुका ये सिलसिला जब तक उसके पापा ने उसको देख नहीं लिया। उसको हाथ पकड़ के बाहर लेकर चले गए स्कूल से, और ये बोले कि तुम मास्टर हो इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, लेकिन वो पढ़ेगा यहीं पर, और इसके बाद जितने भी आएंगे वो भी यहीं पर पढ़ेंगे। यहाँ साइड में देखिए पिक्चर भी दिया हुआ है जूठन का, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। जरा पिछले पेज पर आ जाइए, पेज 7 पर। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। कुर्मी क्षेत्रीय 26/5 4 BSc माइक्रोबायो SSC बायोटेक BEd असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज हेतु सुजातीय वर चाहिए। ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण ध्रुव कौशल गोत्र 30/5.00 गौर वर्ण MA 3 विषयों में एवं एंड डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए सर्व ब्राह्मण मान्य। तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऊपर दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में जाति की सूचना देने वाले अर्श पर गोला कीजिए। तो यहाँ पर जाति की सूचना के हिसाब से वर ढूंढा जा रहा है। नाउ कम टू सेकंड पैराग्राफ। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय किया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगी कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि पड़ोस में मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ने ऐसा करने में इच्छुक नहीं थे इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग एक महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिक मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थे। तो ये दूसरी कहानी उन लोगों के बारे में है जो देश में अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है। मतलब ये थे मिस्टर एंड मिसेज अंसारी थे। ये लोग नए नए आए थे शहर में, इनको मकान चाहिए था और ये पैसे वाले थे तो कोई दिक्कत नहीं था किराए वगैरह का। एक डीलर के पास गए, उन्होंने बोला कि हमें घर चाहिए है। तो उसने बोला मेरे नज़र में काफ़ी सारे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इन लोगों ने बोला ठीक है। तो पहले तो इनको एक घर जो इन्हें देखा पसंद आ गया। मकान मालिक ने बोला ठीक है, अच्छा है सब कुछ। लेकिन जब मकान मालिक ने इनका नाम जाना, सरनेम जाना कि ये अंसारी हैं, तो उनको मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि समझ में आ गया कि वो मुस्लिम हैं। तो बोल दिया कि हमारे यहाँ सारे वेजिटेरियन लोग रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन कोई रहता नहीं है, इसलिए हम आपको घर नहीं दे सकते। जबकि बगल वाले घर से मछली पकने की गंध आ रही थी। तो इससे इन लोग को समझ में आ गया कि ये लोग सिर्फ हमें हमारी कास्ट और हमारे रिलीजन की वजह से घर नहीं दे रहे। आजू बाजू सामने के जो भी घर थे उन लोगों ने भी यही बहाना करके मना कर दिया। फिर और भी जगह इन लोगों ने ढूंढा तो कुछ नहीं मिला इनको, तो यही बहाना सबसे मिलता था। तो फिर डीलर ने बोला कि आप अपना सरनेम कुमार रख लीजिए। तो इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर एक महीने बाद ढूंढने के बाद इनको एक घर मिला जहाँ की जो मकान मालिक थी वो इनको किराए पर घर देने के लिए तैयार थी। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह पर रखते हुए चार पंक्तियां लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसे अनुभव करते। तो ये आपका काम है, आपको करके बताना है। नाउ कम टू दिस सेकंड ब्लू बॉक्स। आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम थे। यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते तो आपको रहने के लिए इस कारण जगह ना मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? उनको समझाते कि हम अलग नहीं हैं, हम आप ही की तरह हैं, हम भी इंसान हैं, धर्म अलग है तो क्या हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में लोग उनके लोगों के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनके डिस्क्रिमिनेशन होता है उनका जो जन्म स्थान है उसकी वजह से, जाति, धर्म, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर हैं। मतलब अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर रखते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा पर बहुत ज्यादा ठोस पहुंचती है। जैसे कि अंसारी जो परिवार था उनके साथ उनके धर्म की वजह से उन्हें घर नहीं मिल रहा था, या जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे एक दलित थे, तो उनको ये महसूस कराया जाता था कि वे बाकी छात्रों से बहुत अलग है और उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो इन्हें इस असमान व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। मतलब बच्चे थे जब वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उस टाइम पर ये सब हो रहा था तो उनको खुद को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो उनके टीचर्स बोलते थे वो करते थे, बट जब उनके पापा ने देखा तो उन्होंने शिक्षकों का प्रोटेस्ट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने पर रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। तो इसी तरीके से जैसे इन लोगों को घर नहीं मिल रहा था इनके धर्म के बेसिस पर, तो इनको भी बहुत बुरा लगा था। और भले प्रॉपर्टी डीलर ने बोल दिया था कि आप अपना सरनेम चेंज कर दो, बट इन लोगों ने नहीं किया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अब ऊपर आ जाइए, ये जो ब्लू कलर से लिखा है, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? इस प्रकार देते कि हम सब तो इंसान जो है, हम भगवान के बनाए हुए हैं। अगर हमारे सरनेम से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम क्यों अपना सरनेम बदलें? वो इंसान अपनी सोच बदले। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? तो देखिए, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा हो। तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे कॉम्प्लेक्शन पर बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता था स्कूल में। जब मैं छोटी थी मुझे बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता था कि काली 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 बोलकर, तो उस टाइम पर मुझे भी बहुत बुरा लगता था। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप ये बता सकते हो कि कोई अगर आपको मिसबिहेव कर रहा है, सही से आपको, आपसे बात नहीं कर रहा है तो कैसा लगता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर्स बने हुए हैं, लोग बूट पॉलिश करवा रहे हैं। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। ये एक पिक्चर का सीन है जिसमें ये बूट पॉलिश करने वाला एक लड़का है, तो इसको जो ये सेठ लोग हैं जो अपना बूट पॉलिश करा रहे हैं, ये पैसे फेंक कर देते हैं। तो वो ये बोलता है कि मुझे पैसे फेंक कर नहीं, आप मेरे हाथ में दो, क्योंकि मेरा जो काम है मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने काम के लिए ऐसे फेंके हुए पैसे नहीं लूंगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पर पार्लियामेंट की पिक्चर बनी हुई है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान लिया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ये चीज मान ली गई है कि हर एक जो इंसान है वो इक्वल है, और नहीं तो पहले लोगों को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरानी नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। मतलब हमें ये सम्मान जो स्थापित करना है अगर, तो इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि सबके लिए एक कानून है, कानून की दृष्टि में सभी एक हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का, चाहे गरीब से गरीब इंसान हो, कानून सभी के लिए एक है, किसी के लिए चेंज नहीं होता है, सबको सेम कानून का पालन करना होता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानों और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें वो ये था कि आप सारे पब्लिक यूटिलिटीज के प्लेसेस यूज कर सकते हो। यहाँ देखिए एक पिक्चर दी हुई है, सतत विकास लक्ष्य 2, भूखमरी समाप्त करना है। मतलब हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खाना देना है सो दैट उनका पोषण अच्छे से हो पाए। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है, पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। मतलब 2 तरीके से इन्होंने इक्वालिटी का जो हमारा राइट है उसको बनाया है, पहला तो बाय लॉ, और दूसरा हमें कुछ कुछ ऐसी योजनाएं बना के दी हैं जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्ष तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों की अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे लॉज बने हुए हैं हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं ताकि वो ये देख सकें कि जिन ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी अपना जीवन सुधारने की, अब उन्हें मिले और वो अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करें। यहाँ देखिए साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है, उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है, मतलब लंच दिया जा रहा है। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। मतलब सरकार ने एक योजना बनाई थी मिड डे मील की, जो कि सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी और 2001 के अंदर अंदर सरकार ने सभी राज्य सरकारों ने बोला था कि उच्च न्यायालयों से कि अब यहाँ पर भी हर गांव में बच्चों को हर सरकारी स्कूल में मिड डे मील शुरू हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों की अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो मतलब ये जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ। पहले के समय क्या होता था कि बच्चे लंच के टाइम पर जाते थे घर पे खाना खाने और फिर वापस ही नहीं लौटते थे, लेकिन अब जब खाना यहाँ पर मिलने लगा है तो वो लोग आराम से आते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं, अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है बच्चों की और रोज आते हैं बच्चे। और जो माताएं जिनको अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाने जाना पड़ता था उन्हें वो भी नहीं करना पड़ता। और जाति प्रथा को हटाने के लिए, भेदभाव को हटाने के लिए भी ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हर जाति के बच्चे पढ़ते हैं और काम करने के लिए यहाँ पर दलित महिलाओं को रखा गया है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जा अमीर के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसकी वजह से हमारी ये जो समानता वगैरह सब तो बढ़ गई है, बहुत अच्छा है सब कुछ है, और अभी भी ऐसी चीजें हैं जो हमें चाहिए हैं जो हमारे पास नहीं है इन सरकारी स्कूलों में। मिड डे मील का जो कार्यक्रम है वो निर्धन बच्चे जो हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का, ये सब करने का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो अमीर लोगों के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वैसी फैसिलिटीज आज भी इन स्कूलों में नहीं है। ब्लू बॉक्स पर आ जाइए पिछले 11 पेज नंबर पे जो है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है, क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं, आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है मिड डे मील, जो कि स्कूल में ही आपको दोपहर का खाना दिया जाता है, और इसके 3 लाभ ये हैं। सबसे पहला, बच्चे भूखे पेट नहीं रहेंगे तो वे पढ़ाई की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दूसरा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और तीसरा, बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, आपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए, इस योजना में क्या किया जाता है या किसके लाभ के लिए बनाई गई है। तो ये आप लोगों का टास्क है, यू ऑल हैव टू डू इट। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनको उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। आज भी मतलब बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर ओम प्रकाश जैसे दलित बच्चे पढ़ते हैं और उनको जो ड्रॉप्स करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उनके सम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है। और ऐसा इसलिए होता है कि भले कानून बन गया है लेकिन लोग अभी भी उनको हमारे जितना या अपने जितना समान नहीं समझ पाए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है फिर भी वे जाति धर्म अपंगता आर्थिक स्थिति और महिला होने के कारण आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी भी भेदभाव है कि लोगों की जो थिंकिंग स्किल्स है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही, वो बहुत धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं उनमें। और लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना ये सारे कानूनी अपराध है लेकिन उसके बाद भी वो इन सब बेसिस पर करते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं। और धीरे धीरे उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है जिसे कुछ लोग तो समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करने का एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी लोकतंत्र डेमोक्रेसी है इसमें इक्वालिटी एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, इसमें हम और पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ साइड में देखिए बी आर अम्बेडकर जी की पिक्चर है, यहाँ नीचे कुछ लिखा भी हुआ है जो उन्होंने बोला था। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये बता रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्फिडेंट होकर और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए, उसको मार कर नहीं। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और मानव जीवन के बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं होता। मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने सेल्फ जो रिस्पेक्ट है हमारी उसको बना के रखें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। अब आ जाइए अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन के मुख्य रूप में असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे भारत में ही इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, भले हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, बट ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहां पर जो पिछले जो उनके अफ्रीकन जो वहां पे थे वहां से उनको मजदूरी कराने के लिए लेकर आए थे उनके पूर्वजों को जो अफ्रीकी अमेरिकन वहां पे रहते हैं और आज भी उनका जीवन वहां पर समान नहीं है। जबकि 1950 के टाइम पर एक आंदोलन हुआ था यहाँ पर इन लोगों को समानता दिलाने के बारे में, लेकिन अभी भी उनके साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देखिए, जैसे अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब जो अफ्रीका से आया हुआ अमेरिकन है, अफ्रीकन मतलब अमेरिका में आया है, तो उस अफ्रीकन को बस में सबसे पीछे बैठना पड़ता था। और अगर मान लीजिए पूरी सीट फिल है और अगर किसी गोरे व्यक्ति को बैठना है, किसी अमेरिकन को बैठना है, तो उसको अपनी सीट छोड़कर उठना पड़ता था। यहाँ एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें लिखा है रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। तो ये बस में आराम से बैठी है आगे और ये पीछे नहीं गई। रोजा पार्क्स 1913-2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 के को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। हुआ क्या था, रोजा पार्क जो थी वो 1913 से 2005 तक उनका जो कार्यकाल था, वो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिन्होंने 1 दिसंबर 1955 में दिन भर से वो काम से थक कर आई थी, तो वो बस में अपनी एक सीट पर बैठी और उन्होंने किसी गोरे व्यक्ति को अपनी वो सीट देने से मना कर दिया। तो तब से ही एक मूवमेंट चालू हुआ, एक आंदोलन चालू हुआ जिसका नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में पढ़ते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूल जैसा ही ऊंचा है। तो मतलब काफी ज्यादा चेंजेस आए थे, इक्वालिटी के बेसिस पर सब कुछ कर दिया था, स्कूल्स वगैरह सब बच्चों के लिए खोल दिए थे, लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए अपने बच्चों को कम सुविधा वाले सरकारी स्कूलों में भेजते थे और जो गोरे थे वो ज्यादा सुविधा वाले सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, कम टू दिस ब्लू बॉक्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा। सेकंड, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, पहला, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्थान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक सागमों के स्थान में के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो मतलब उनको हर जगह इक्वालिटी मिलेगी। नाउ कम टू लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह लोकतंत्रीय नहीं किया जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। मतलब किसी भी आप देश को पूरी तरीके से आप डेमोक्रेटिक नहीं बदल सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उसमें खोट पैदा करते हैं और बहुत से समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है। जिसमें आप ये जानेंगे, इसका जो केंद्र है वो ये है, संघर्ष करना, अपनी समानता के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना। तो आप इस बुक में इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना की को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो इस हिसाब से अभी इस चैप्टर में अगर देखें तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब आ जाइए अभ्यास पर। पहला प्रश्न है इसमें, लोकतंत्र में सार्वभौमिक व्यक्तिगत मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि सब लोगों को एक समान इज्जत और सम्मान मिले। कम टू सेकेंड क्वेश्चन, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिन्हें एक अनुच्छेद असमानता को दूर रखता है। तो दो ऐसे चीज हैं कि आप लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता और किसी भी शिक्षा के स्थल पर जाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। कम टू थर्ड क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता है। उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ओम प्रकाश जी के साथ भी और अंसारी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनकी जाति और धर्म को लेकर। कम टू फोर्थ क्वेश्चन, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं। आपके विचार में यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। इसका मतलब होता है कि सभी के लिए कानून एक प्रकार है, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो उसके लिए भी कानून सेम है और चाहे वो अमीर से अमीर व्यक्ति हो उसके लिए भी कानून सेम है। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है ताकि सबको इक्वालिटी मिल सके। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी जानता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वहां विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। तो ये जो अधिनियम था 2016 का, दिस वॉज इनिशिएटेड बाय द प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन्होंने ये बोला था कि जितने भी ऐसे लोग हैं जैसे बच्चे हैं, इनको हम धीरे धीरे नॉर्मल स्कूल्स में भेजेंगे ताकि वो पढ़ पाए अच्छे से, और इनके लिए वहां पर प्राम सुविधा करवाई जाएगी, ढलान, जिसकी वजह से ये आराम से जा सके वहां। फिर यहाँ पर देखिए, चित्र को देखिए और उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे सीढ़ियों के नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में उपयुक्त कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन से आसानी से आ जा सके उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? तो मतलब यहाँ पर वो प्रैम बनाना चाहिए, नहीं तो उस बच्चे को ये लगेगा कि मैं कितना ज्यादा डिपेंडेंट हूँ लोगों पर। फिर यहाँ पर शब्द संकलन, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है? यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नगरीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सेकंड, गरिमा, इसका तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझने से है। थर्ड, संविधान, यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। फोर्थ, नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक में अंत में आरंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको जितनी भी एक्टिविटीज और वो जो ब्लू कलर से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर जरूर फाइंड आउट करिएगा चैप्टर को दोबारा से पढ़ के, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।